الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر موضوع گفتگو رسول اعظم کی رحلت کے بعد جو انحرافات دینی ماحول میں اسلامی ماحول میں اور اسلامی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ان کے نسبت جناب سیدہ نے کس طرح سے مبارزہ کیا اور کس طرح سے مقابلہ کیا. پچھلی نشست میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 اس کے ذیل میں گفتگو ہوئی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین. مبارزہ اور جنگ عرض ہوا کہ اس کے دو انداز ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ دو طرح سے ہوتی ہے, ایک اسلحے کے ذریعے سے اور ہتھیار کے ذریعے سے کہ جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, دوسری جنگ اسلحے کے ذریعے سے نہیں کہ جو ظاہری اسلحہ ہو, مگر اسلحہ ہوتا ہے لیکن اس اسلحے کا نام ہے کردار اور اخلاق, اخلاقی رویہ اور کردار اور کریکٹر جس قدر اثر رکھتا ہے وہ ظاہری تیر و کمان اور تلوار اور شمشیر اور آج کی زبان میں ٹینک اور توپیں اور کلاشنکوف اور اس قسم کا جو ایمونیشن ہے وہ اس قدر اثر نہیں رکھتا. آسان الفاظ میں اگر دشمن پر کامیاب ہونا ہے اور غالب ہونا ہے تو بہترین ہتھیار کریکٹر کا ہتھیار ہے, اخلاق کا ہتھیار ہے اور اخلاقی جنگ ہے. آج کی دنیا نے اسے تقریباً یقین کی منزل پر پہنچایا ہے سمجھنے کے لحاظ سے کہ وہ جنگ ہرگز جیتی نہیں جا سکتی کہ جو ظاہری اسلحے کی بنیاد پر ہو, اور اگر ہو جائے اسلحے کی بنیاد پر کہ میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور جو ہماری ایج کے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلحے کی جنگ بالآخر نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. جانوں کا نقصان ہوتا ہے, مال کا نقصان ہوتا ہے اور اقتصادی لحاظ سے اگر ملکوں کو دیکھا جائے تو جنگ سے پہلے اکنامکس اچھی ہے, لیکن جیسے ہی جو جنگ کا آغاز ہوتا نہیں जंग की तैयारियां होती नहीं, और जब जंग स्टार्ट होती है तो उसी वक्त मालूम हो जाता है कि इक्तिसादी सूरत हाल कैसी है, कि उस मुल्क को अगर देखा जाए कि जो जंग पर है तो वहाँ की आवाम मुफलिस से मुफलिसतर हो जाती है, बहरहाल स्ट्रक्चर जो है नाबूद हो जाता है। जनाब सैयदा ने मुबारजा अगर किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मुबारजा अगर किया रसूल आज़म की अपने बाबा की रहलत के बाद, तो अर्ज़ हुआ वो कौन से हथियार से जंग की, और वो हथियार अगर हम देखना चाहें तो वो ज़ाहरी हथियार नहीं है। तारीख़ ने बाकायदा मुझे और आपको अब इस टाइम तक जो मतलब मुझे और आपको महसूस होता है तारीख से, वो यही है कि जुज किरदार के, जुज अखलाक के और जुज कैरेक्टर के और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती अहले बैत अतहार की जंग में। हत्ता अगर करबला को भी ले लिया जाए तो करबला की जंग ज़ाहरी तौर पर जब मुझे और आपको महसूस होती है तीर और कमान की, लेकिन हकीकी जंग किरदार की जंग थी। क्योंकि अगर असलहे की बुनियाद पर और अफराद की तादाद की बुनियाद पर जंग हो तो बहुत माजरत के साथ करबला में शिकस्त इस तरफ हुई कि जो ज़ाहरी तौर पर दिखाई देती है, लेकिन हकीकी जीत जो है करबला वालों की है। लेकिन उस जीत का जीत की बुनियाद दर हकीकत हुसैनी लश्कर का किरदार है, अखलाक है, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आज करबला और अहले करबला बाकी है और वो अपना दर्स दे रहा है। जनाब सैयदा का भी जो है किरदार इस हवाले से बहुत टॉप नज़र आता है। ख़ास तौर पर मुख्तसर सी नशिस्त है हमारी, जनाब सैयदा ने अपने बाबा के दौर में जो कुछ देखा ज़ाहरी तौर पर भी दिखाई दिया और बातिनी तौर पर भी दिखाई दिया। गौर से सुनिएगा, तौहीद का अलम जो बुलंद किया और नस्ब किया जिस माशरे की सरजमीन पर आपके बाबा ने, वो जनाब सैयदा ने देखा और वो परचम खूब लहराया। लेकिन जैसे ही जो है रसूल आज़म की वफ़ात हुई नहीं, वो तौहीद का परचम मुतजलजल हुआ। तौहीद का परचम अज़ान मन मुतजलजल होता नहीं, मगर उसके साथ साथ गौर से सुनिएगा जितने भी उसके आसार हैं पॉजिटिव, वो भी जो है मुतजलजल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर तमहीदी तौर पर चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे। अगर हम में से कोई ये जानना चाहे, कि इंशाल्लाह सब के सब जानना चाहेंगे कि इस्लाम की हकीकत क्या है, दीन की हकीकत क्या है और मकतब की हकीकत क्या है, तो जवाब है इसका तीन चीज़ें इस्लाम, दीन और मकतब की हकीकत है। बहुत गौर से सुनिएगा। एक का नाम है एतकादात, अकायद। दूसरी चीज़ का नाम है अहकामात, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, वगैरह वगैरह जितने भी अहकामात हैं। तीसरी चीज़ अखलाकियात। बस ये तीनों चीज़ें जब जमा होती हैं तो नतीजा दिखाई देता है दीन की सूरत में। जहाँ पर खुदा की निस्बत, खुदाइयत का इकरार हो, यानी अकीदा, नबूवत के हवाले से अकीदा पुख्ता हो, इमामत के हवाले से अकीदा पुख्ता हो, माद और क़यामत की निस्बत जो है अकीदा पुख्ता हो और अदालत की निस्बत, तो वहाँ पर दीन का एक हिस्सा हमारे पास है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन यही अकायद सारे मुझे और आपको मस्जिद की तरफ आने के लिहाज से और नमाज को अंजाम देने के लिहाज से गामजन करते हैं, मुख्तलिफ इबादात को अंजाम देने के लिहाज से गामजन करते हैं। क्योंकि अगर मैं और आप खुदा पर ईमान ना रखते हों तो नमाज़ किस चीज़ की, रोज़ा किस लिए, हज किस लिए, मुख्तलिफ इबादतें उसकी बुनियाद जब नहीं है तो इबादतों का क्या काम। बस अकायद जो हैं बुनियाद है मुख्तलिफ इस किस्म की इबादत की। बहुत गौर से सुनिएगा। और जैसे ही मैं और आप नमाज़ को पढ़ते नहीं, रोज़ा रखते नहीं, हज अंजाम देते नहीं, हमारे वजूद के अंदर एक हलचल आती है और उस हलचल का नाम है अखलाक। जब नमाज़ पढ़ता है इंसान तो किसके सामने उसने अपनी जबी को झुकाया है, किसके सामने उसने रुकू को अंजाम दिया और क़याम को अंजाम दिया। बहुत माजत के साथ, अगर कोई भी नहीं तो इस नमाज का कोई असर नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस नमाज के लिए जो हमने सजदा किया, रुकू किया, क़याम को अंजाम दिया, मुख्तलिफ अज़कार को अंजाम दिया, सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, जिसकी हमदो सना की हमने इस किस्म के अल्फाज के ज़रिए से, उसका वजूद है। और वो वजूद कैसा वजूद है, हमें बचपन से हमारे वालिदैन ने सिखाया, अल्लाह है वो देखता है, अल्लाह है वो सुनता भी है, अल्लाह है वो एहसास भी करता है। बस जब कोई माबूद ऐसा है कि जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जिसे एहसास भी है, तो इसका मतलब ये है कि जिसके सामने आपने और मैंने जबी झुकाई है और रुकू का काम को अंजाम दिया और क़याम के अमल को अंजाम दिया, ये नमाज़ मुझे और आपको एक हलचल अता करती है। का वो हलचल क्या है, कब मस्जिद से बाहर जाने से पहले अपने आप को पाबंद कर लेना कि कोई देखने वाला है, कोई सुनने वाला है, लिहाजा ऐसी वैसी हरकत को अंजाम मत देना। यहाँ तक कि जाहिर को नहीं, अपने बातिन को भी सही रखो। बातिन को सही रखो क्या माना, कब बातिन में अपने दिल के अंदर किसी के बारे में बुरा मत सोचना, कोई मनफी चीज़ अपने जहन में मत रखना। कहा क्यों, कहा तुम्हारे दिलों के हालात से अल्लाह वाकिफ़ है। ये नमाज़ मुझे और आपको मोटिवेट करती है, मुतहर्रिक करती है, हरकत देती है अच्छे कामों को अंजाम देने के लिहाज से। तो इन अच्छे कामों को क्या कहा जाता है, अखलाकियात। मैं और आप अपने माशरे के अंदर जब कोई शख्स अच्छा काम करता हुआ नज़र आता है मुझे और आपको, तो हम क्या कहते हैं, कहा माशाल्लाह क्या खूब जवान है, क्या खूब फलां शख्स है, क्या खूब फलां खातून है, इनका अखलाक, इनका किरदार, ये सब कुछ जो है अल्लाह के लिए है, तो हम फौरन तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब दरियाफ़ किया जाए और मालूम किया जाए कि ये अखलाक कहाँ से आए, तो दोबारा पीछे आएँ। कई अखलाक आएँ नमाज से, रोज़े से, ज़कात से, हज से, मुख्तलिफ इबादात से। और अगर दरियाफ़ किया जाए कि ये नमाज उसका रीशा क्या है, उसकी बेस क्या है, तो फौरन कहा जाएगा क्योंकि ये अल्लाह के मानने वाले हैं, क्योंकि ये रिसालत और नबूवत के जो है कायल हैं, क्योंकि ये क़यामत के कायल हैं, लिहाजा जो है इनका अकीदा जैसे जैसे डेवलप होता है, आगे जाता है, नमाज वैसे ही अंजाम पाती है पुख्ता अंदाज में। और जैसे जैसे पुख्ता अंदाज में जो नमाज अंजाम पाती है, अखलाकियात भी मज़बूत से मज़बूतर हो जाते हैं। रसूल ने ये सब कुछ अल्लाह के ज़रिए से मुझे और आपको पहुँचाया, मगर उस ज़माने में कि जो बहस करने हम यहाँ बैठे हुए हैं गुफ्तगू करने और सुनने के लिए, वो ये है कि रसूल ने 23 साल के अंदर जो काम अंजाम दिया वो इन तीन चीज़ों पर अंजाम दिया, अकायद, अहकाम और अखलाकियात। लेकिन जैसे ही जो है रसूल इस्लाम इस जहाँ से गुज़रे नहीं, ये दोबारा कौम जाहिलियत की तरफ पलट गई। और अगर आपको याद हो पिछली नशिस्त हमने अर्ज़ किया था कि जहालत ये नहीं कि इंसान ने जो है अलिफ बे जो है ना पढ़ा हो ना सीखा हो, उसे पढ़ना ना आता हो अलिफ बे और ना जो अलिफ बे सीखा हो, ना स्कूल गया हो, नहीं। मौला के वक़ौल जाहिल वो है कि जिसकी ज़िंदगी में बैलेंस ना हो, बस आलिम वो है कि जिसकी ज़िंदगी में बैलेंस हो। जनाब सैयदा ने बाबा की ज़िंदगी में, गौर से सुनिएगा, जनरल नॉलेज है, बैलेंस देखा, और क्या खूब बैलेंस देखा। लेकिन जैसे ही जो है बाबा की आंखें जो हैं बंद हुई नहीं, रसूल इस दुनिया से रुख्सत हुए नहीं, बैलेंस आउट हो गया। यानी जो पहले जाहिलियत थी, रसूल आज़म ने अल्लाह की इनायत से जाहिलियत को इल्म में तब्दील किया, आलिमाना माशरा करार दिया, तवाज़ुन वाला माशरा करार दिया। लेकिन जैसे ही जो है रसूल इस्लाम गए नहीं, वो तवाज़ुन बेतवाज़ुनी में तब्दील हुआ, यानी जाहिलियत पलट कर आ गई। अब गौर से सुनिएगा, मुसलमान वही है, मोमिन वाकई वही है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत लजीज है और याद रखने वाली बात। और हमने पिछले हफ्ते भी अर्ज़ किया था कि ये सिर्फ बातें जो हैं उस ज़माने की तारीख़ को दोहराने के हवाले से नहीं है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बल्कि हमें अपने ज़माने के अंदर भी अपनी ड्यूटीज़ को भी देखना है, अपने फ़राइज़ को भी देखना है। जनाब सैयदा ने जो रोल प्ले किया, वो ईमान परवर रोल प्ले किया है। मुस्लिम वाकई, गौर से सुनिएगा, मोमिन वाकई वो है कि जब अल्लाह को कबूल कर लिया, अल्लाह के सामने जबी को झुका दिया, तो ये जबी का झुकाना उसे जो है मुतहर्रिक करता है। मुतहर्रिक करता है क्या मतलब का, अगर हक मुतजलजिल हो रहा है और बातिल जो है परवान चढ़ रहा है, तो हर मोमिन पर लाजिम है कि हक का दिफा करे और बातिल बातिल की जो है नाबूदी के लिए काम को अंजाम दे। जनाबे सैयदा ने जो है जब ये माहौल देखा कि तवाज़ुन बिगड़ चुका है, जाहिलाना दौर वापस पलट रहा है, तो अब जो है आपने जो है कमर बस्ता होकर एक काम अंजाम दिया। और वो काम क्या है, तमाम कामों को जो है समेट लें, एक काम, हक की आवाज़ को बुलंद करना, बातिल के चेहरे को रूशनास करवाना। और किया, और हम सब जानते हैं कैसे किया। दुश्मन और फितनगर अफराद आपके दरवाज़े पर लाकर लकड़ियां जमा कीं, आग को रोशन किया नहीं, दरवाज़े को गिराया नहीं, जुल्म के पहाड़ तोड़े नहीं। और इसके बाद जो कुछ हुआ, दरबार में गई नहीं मगर हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ये मुख्तसर सी नशिस्त हमारी उसी खुतबे की जहत से है कि जो खुतबा फ़दकिया के नाम से मशहूर है। खुतबा फ़दक हतमन आपके अजहान उनके अंदर मौजूद होगा, ये कि अगर खुतबा फ़दक को देख लिया जाए तो खुतबा बराए खुतबा थोड़ी है, खुतबा बराए हदफ है। और वो हदफ क्या था कि जो अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ हुआ, हक का दिफा और बातिल की नाबूदी। और यही हुआ खुतबे को अज़ान मन, बच्चे अगर पढ़ सकते हैं तो उर्दू में भी जो है ट्रांसलेट है, और अगर बड़े पढ़ सकते हैं तो हत्ता टाइम निकालना चाहिए और इसे पढ़ें। और मैं बग़ैर किसी एहसासात के और बग़ैर किसी जज्बात के आपके अर्ज़ करना चाहूँगा कि खुतबा फ़दकिया नहजुल बलागा से कम नहीं। पूरी नहजुल बलागा अगर आप देख डालें और खुतबा जो है फ़दकिया को देख डालें, नहजुल बलागा का ख़ुलासा क्या है, यही एतकादात, अहकामात और अखलाकियात। जनाब सैयदा ने अगर खुतबा दिया तो दर हकीकत जो है मुबारजा किया है, जंग की है, अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से जो जानती थी उसे मुंतकिल किया है। कहा क्योंकि मैं साहिब ईमान हूँ, जनाब सैयदा ने कहा, लिहाजा मेरा वजीफ़ा है, हर मोमिन के लिए वजीफ़ा है, अगर कोई नहीं उठता तो वो जाने और खुदा, लेकिन मेरा वजीफ़ा है। कहा या सैयदा आपका क्या वजीफ़ा है। कहा तौहीद का परचम मुतजलजिल हो रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा, लिहाजा तौहीद के परचम को संभालने के लिए दरबार में गई हूँ। का तौहीद के परचम को अगर जो है लरस्ता हुआ मैंने देखा और अगर किसी ने उसे संभाला नहीं, हत्ता मैंने भी, तो नबूवत जो है लरज उठेगी, वो भी मुतजलजल हो जाएगी। और अगर नबूवत मुतजलजल हुई तो इमामत भी गई, और अगर इमामत मुतजलजल हुई तो कयामत भी गई। और ये ज़ारे अकायद जब जो हैं मुतजलजल हो जाएं, एक एक करके नीचे आना शुरू हो, तो दीन का शिराज़ा बिखर जाएगा। और जब दीन का शिराज़ा बिखर जाएगा तो ये इंसान नुमा जो चेहरा रखने वाले इंसान हैं ये हैवान होंगे। जबकि मेरे रसूल, मेरे जो बाबा ने, के जो रसूल आज़म थे, उन्होंने इन हैवान को, यानी इन हैवानों को बाकायदा खुतबे के अंदर है, काए लोगों, ए महाजिरों, ए अंसारों, जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी इस्लाम से पहले और मेरे बाबा के आने से पहले, कहा तुम हैवान से भी बदतर थे। किस तरह से खाते थे, किस तरह से पीते थे, किस तरह से पहनते थे, किस तरह से ओढ़ते थे, तुम्हारा किरदार कैसा था। लेकिन मेरे बाबा ने आकर खुदा की इनायत से तुम्हें क्या कर दिया, इंसान बनाया, जैसे चेहरा है अंदर का भी इंसान तुम्हें बनाया। मगर तुमने क्या किया, मेरे बाबा के जाने के बाद, यानी रसूल के जाने के बाद, तुमने इस्लाम की बुनियादों को खोखला करना शुरू कर दिया। क्या जानते हो तुम्हारा ये खोखलापन या खोखला करने की जो आदत है, गौर से सुनिएगा, उसका राज क्या है। उसका राज जूस खुदा फरामोशी के और कुछ नहीं है। यही रुकूंगा मैं थोड़ी सी देर के लिए। आज हम अपने माशरे को अगर हम देखें, जहां जहां दीन मुतजलजल दिखाई देता है, यहां पे हम अपने माशरे के अंदर इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, तो उसका रीज़न और उसका सबब और उसका राज तौहीद का मुतजलजल होना है, खुदा फरामोशी। अभी थोड़ी देर पहले अर्ज हुआ, हम अल्लाह के कायल हैं, अल्लाह का कायल होना नमाज की तरफ, इबादतों की तरफ गामजन करता, और इबादतें जो हैं मुझे और आपको अखलाक अपनाने पर मजबूर करती है। और अगर अखलाक ना हो तो हम हैवान हैं, वलो चेहरा हमारा इंसान का है। जनाब सैयदा ने वहाँ पर गोशगुजार किया इन तमाम अफराद को, आगाज ही यही किया। अब गौर से सुनिएगा खुतबे को, अगर मुलाहिजा करें तो ज़ाहिर तौर पर जो है खुतबा जब शुरू होता है, जिस तरह से मैं और आप जब जो है किसी मजलिस में शरीक होते हैं, तो ज़ाकिर अहले बैत जब खुतबा पढ़ता है तो अल्लाह की हमदो सना करता है, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करता है, और उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू शुरू होती है। जनाब सैयदा ने आगाज़ किया दो से तीन कलेमात के ज़रिए से, यानी कलाम के ज़रिए से, और आगाज़ के अंदर हमदो सना की है और शुक्र बजा लाई है। अब सुने गौर से, शुक्र के साथ जो काम अंजाम दिया है, कहा कि जो है अल्लाह ने जो है ए लोगों, हम सब को जो कि इंसान हैं, इल्हाम किया है अपनी नेमतों को, इल्हाम किया है नेमतों के मुकाबले पर शुक्रिया अदा करने को। अब यहीं रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए। जनाब सैयदा ने यह कहकर क्या इजहार करना चाहा और क्या डिलीवर करना चाहा? सूरज शम्स की एक आयत है, जैसे ही पढ़ेंगे हम, आप हजरात के जहन काम करेंगे, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा। खूब इसकी मीनिंग भी सब जानते हैं मैं और आप, कि अल्लाह वो है कि जिसने इंसान को खल्क किया अपने हाथों से, और उसके बाद उसे हमवार किया, जहां सर होना चाहिए वहां सर रखा। गौर से सुनिएगा, सूरज शम्स के हवाले से बात कर रहे हैं, व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। ये चंद आयात क्या कह रही हैं? जनाब सैयदा ने पहले ही दो फिक्रे और तीन फिक्रों में जो है ये समझाने की कोशिश की, कहा अल्लाह ने अपने हाथों से तुम्हें इंसान करार दिया है, जहाँ सर होना चाहिए वहाँ सर, सर में जहाँ आँखें होनी चाहिए वहाँ आँखें, जहाँ कान होने चाहिए वहाँ कान, आँखें दो होनी चाहिए तो दो, नाक इधर होनी चाहिए, मुंह ये होना चाहिए। व नफ्सियों व ममा सवाहा, ममा सवाहा की मीनिंग यही है जो हम कर रहे हैं उर्दू ज़बान में। और उसके फ़ौरन बाद खुदा ने क्या कहा, फालहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, अल्लाह ने तुम्हें नेकियों की तरफ और बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए दो फहरिस्तें अता की तुम्हारे कल्ब के अंदर। यही रुकूंगा और जो है हम रुक कर जो है ये कहेंगे आपसे, अगर किसी ने मुझे और आपको अभी बाहर निकलते ही किसी ने कोई गिफ्ट अगर दे दिया हमारे हाथ में, तो बग़ैर शुक्रिया अदा किए हम रहेंगे नहीं। हमारा अंदर ज़मीर जो है वो मलामत करेगा अगर फ़र्ज़ करें थैंक्स नहीं किया हमने, शुक्रिया अदा नहीं किया हमने। जनाब सैयदा ये कहती हैं कि जो है अल्लाह ने इतना इनाम और इकराम किया तुम पर, और तुमने जो क्या उस इनाम और इकराम का पास नहीं रखा और तुमने उसे ठुकरा दिया है। का इसलिए कि हकदार को हक मिलना चाहिए, तुमने बजाय हक देने के हक ले लिया। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बस जिस मुआशरे के अंदर गौर से सुनिएगा, नेमतों के मुकाबले पर शुक्र ना हो, मुसीबतों के मुकाबले पर सब्र ना हो, वो मुआशरा ईमान से आरी और खाली है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही खूबसूरत बयान, अगरचे मौला का हर बयान खूबसूरत और नफीस याद रखने वाला कलाम है। मौला क्या फरमाते हैं, क्या जानते हो मोमिन की डेफिनेशन क्या है? मोमिन का अगर खुलासा करना मकसूद हो एक जुमले में तो कैसे किया जाए? का ईमान दो चीज़ों का नाम है, ईमान दो आधी आधी चीज़ों का नाम है। जो कलाम है मौला का वो ऐसा ही है, अल ईमानो निस्फान, गौर से सुनिएगा, ईमान दो आधे आधे हिस्से हैं, दोनों मिलेंगे तब जाकर ईमान कंप्लीट होगा। निस्फुन फिस शुक्र निस्फुन फिस सब्र, आधा ईमान शुक्र में है और आधा जो दूसरा बाकी रह गया है वो सब्र में। यानी मौला दूसरे अल्फाज में बतलाना चाह रहे हैं कि जो है नेमतों के मुकाबले पर शुक्र करोगे तो आधा ईमान तुम्हारे पास है, और अगर ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई और मुश्किल आई उस पर जो है सब्र से काम लिया, दूसरा आधा भी तुम्हारा है। बस एक आधा दूसरे आधे के साथ प्लस करके इजिकल टू करें तो ईमान कामिल है। जनाब सैयदा ने क्या कहा, कहा जब जो है लोगों अल्लाह ने तुम्हें मेरे बाबा के ज़रिए से कि जो रसूल तुम्हें नेमतें पर नेमतों पर नेमतें दी हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कहा तुम्हें जो क्या है शुक्र बजा लाना चाहिए। और शुक्र की निशानी ये है कि जो नेमत तुम्हें खुदा ने दी है उसका हक अदा करो, उसका हक अदा करो। तुमने क्या किया, उस हक को पामाल कर डाला, नतीजतन जो है ईमान की इमारत को मुतजलजल किया। मैं सैयदा हूँ साहिब ईमान और सैयदा निसाए आलमीन हूँ, बस रहबर हूँ, क्योंकि जो क्या है मैं मोमिना हूँ और सैयदा और सियादत मेरे पास है, बस मेरा काम यह है कि मैं इस्लाम का और ईमान का दिफा करूँ, यहाँ तक कि जो है अपनी जान जान आफरीन के हवाले करूँ। ये पहला जुमला है, कुछ भी नहीं कहा हमने अभी। जनाब सैयदा ने देखा कि जो है मुआशरे के अंदर तौहीद की बुनियादें हिल रही हैं, लिहाजा जो है आगे बढ़कर जो है तौहीद को संभालना चाहा और इस खुतबे का आगाज़ तौहीद के जो है इरशाद पर किया। और उसके बाद जनाब सैयदा वो सैयदा के एक इंसान के जो मामूली फलां बिनते फलां हो वो नहीं है। दूसरे अल्फाज में बहुत माजत के साथ, रसूल इस्लाम ने अगर इस बेटी का तारुफ करवाया है तो बेटी होने के हवाले से नहीं, بلکہ امت اسلام کی رہبر ہونے کے حوالے سے تا قیامت. سیدت و نساء العالمین، سب جانتے ہیں حافظ ہیں ہم، سیدت و نساء اہل الجنہ، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف القابات، صدیقہ ہیں، محدثہ ہیں، اور مختلف دوسرے جو ہے راضیہ ہیں، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، زاکیہ ہے، سب کے سب. یہ القابات خالی ایسے ہی نہیں ہیں کہ یہ سیدہ مجسم ایمان ہے اور مجسم اسلام، پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر. لہذا اب جب سیدہ آئیں گی دربار میں مبارزے کے عنوان سے اپنے کریکٹر کے ذریعے سے، تو کس عنوان سے آئیں گی؟ ایک عام انسان کے حوالے سے یا ذمہ دار انسان کے حوالے سے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے واقعی مومن ہے اور انسان کامل. لہذا کیا کیا اس توحید کے بعد؟ توحید کے بعد دفاع کرنا شروع کیا حق کا، اور وہ حق کس صورت میں؟ نبوت کی صورت میں، غور سے سنیے گا، رسالت کی صورت میں اور امامت کی صورت میں. یہیں پر ہی جو ہے بات سنتے جائیے، اور ضروری بھی ہے کہ اگر مبارزہ ہمیں اگر نظر آتا ہے ظاہری طور پر کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہیں گئی ہیں اپنے شوہر کی حکومت اور خلافت کی خاطر، جبکہ عزیزان من ایسا نہیں ہے. ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلافت حق ہے علی کا، امیر المومنین کا، رسول کے چچا زاد بھائی کا، خطبہ پڑھیں. لیکن اگر تھوڑا سا جو ہے میں اور آپ ہوش کے ناخن لیں ایمانی بنیاد کے اوپر، تو جناب سیدہ سیدہ ہیں، کبھی دنیا کی جو ہے بات نہیں کرتی، اور اگر ظاہری طور پر دنیا دکھائی بھی دیتی ہے تو اللہ کی خاطر. وہ کیا مطلب ہے کہ جناب سیدہ دربار میں نہیں گئی ہیں اس ظاہری حکومت کی خاطر اور ظاہری جو ہے وہ ملوکیت کی خاطر، بلکہ ان کو یہ غم تھا اور افسوس کہ یہ دنیا دار افراد کے جن کے پاس یہ حکومت آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا نے، بہت غور سے سنیے گا، کہ جو رسول اعظم رہے، سید المرسلین رہے، جنہوں نے جو ہے ایمان اور اسلام کی عمارت کو تعمیر کیا، یہ آ کر ایمان کی عمارت کو متزلزل کر دیں. لہذا علی کی حکومت ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ علی کی حکومت کے ذریعے سے خدا کی حکومت آئے گی. علی انسانی حکومت کے قائل نہیں، الہی حکومت کے قائل ہیں. اور علی کون؟ کہ ان تمام جو ہے مہاجر اور انصار نے کہ جن کے سامنے خطبہ ہو رہا تھا، وہ سب جانتے تھے کہ علی کون ہے، کہ حق کے ساتھ ہیں. حق کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے. کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو خدا سے ہٹ کر اور اس کا خدا اس سے ہٹ کر جو ہے نظر نہیں آتا ہے، یہ وہ ہیں. پر جناب سیدہ معمولی انسان نہیں ہیں، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے مبارزہ کر رہی ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں. یہ ایک مطلب. چلیں تھوڑا سا آگے کہ اگر جناب سیدہ نے دفاع کیا نہیں، مگر کس چیز کا دفاع کیا؟ ایک ہے عقل، غور سے سنیے گا. بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک ہے عقل، دوسرے ہے جہالت. جناب سیدہ نے کوئی بھی میسج ڈیلیور نہیں کیا دربار میں، مگر حق کی خاطر یعنی عقل کی خاطر. حدیث اگر آپ کے پیش نظر ہو، شاید ذاکران اہل بیت سے آپ لوگوں نے سنی ہو ممبروں سے، کہ اصول کافی میں کتاب عقل اور جہل کے اندر نقل ہے روایت میں کہ خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا، اور عقل کو خلق کرنے کے بعد کہا اے عقل دور ہو، دور ہو گئی. کہا نزدیک آ، نزدیک ہو گئی. اور اس کے بعد اب خطاب کیا خداوند عالم نے عقل سے، کہا اے عقل تو ہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے میں جزا دوں گا، تو ہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں سزا دوں گا. تھوڑی سی تشریح ہو جائے اس کی. यही अक्ल है हमारी कि जिसकी बुनियाद पर जो क्या इंसान अगर सही तरीके से इसे यूज़ करे तो बुलंद और बुलंद और बुलंद होता है, और यही अक्ल है कि इसे अगर मिस यूज़ करे तो ख़ुद को भी तबाह करता है और अपने अतराफ में रहने वालों को भी तबाह कर देता है। जनाब सैयदा ने किसका दिफा किया? काए लोगों, तुम्हें खुदा ने अक्ल दी है, पढ़ें खुतबे के अंदर है मौजूद, कहा खुदा ने तुम्हें अक्ल दी है, शूर दिया है, तुम्हें हिकमत अता की है, लिहाजा जो क्या है इसे मिसयूज़ मत करो, इससे काम लो। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार फरमाने इसी अक्ल के हवाले से, अल अक्लो मा उबेदा बिहिर रहमान वक्त सिबा बिहिल जिनान, बहुत ही प्यारा खूबसूरत का। अक्ल जानते हो क्या है? जिसके ज़रिए से रहमान की बंदगी होती है। अक्ल वो है कि जिसके ज़रिए से जो है जन्नतों को कमाया जाता है, यानी जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास जो है बंदगी परवरदिगार नहीं, और जहाँ बंदगी परवरदिगार नहीं वहाँ जन्नत नहीं। कहा अगर जन्नत चाहिए बंदगी परवरदिगार करो, और अगर बंदगी परवरदिगार करना है भरपूर अंदाज में तो भरपूर अंदाज में अपने अक्ल को यूज़ करो, कि जहाँ पर यह अक्ल का चिराग नहीं वह अंधेरा ही अंधेरा है। बस जनाब सैयदा ने जो है दरबार में आकर इस मतलब को डिलीवर किया है, कहा तुम लोगों ने जिस अमल को अंजाम दिया है ना वो नूरानियत अता नहीं करता है, वो रोशनी अता नहीं करता, बजाय रोशनी अता करने के तारीकी अता करता है, क्योंकि अंधेरा छा चुका है लिहाजा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम ठोकर पर ठोकर खा रहे हो। लिहाजा जनाब सैयदा ने जो इस चीज़ को महसूस किया, इस इनहराफी गरी को महसूस किया कि अक्ल की पैरवी नहीं हो रही, जहालत की पैरवी हो रही है, तारीकी में जो है भटक रहे हैं। लिहाजा जो क्या है मेरा वजीफ़ा यह है, क्योंकि मोमिना हूँ और मोमिन का काम यह है कि वो लोगों को जो है रोशनी दे ताकि जो है भटकने से महफूज रहें। ये एक मतलब, बहुत सारी बातें हैं चाह रहे थे हम करना, लेकिन चंद पॉइंट्स हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। बुलंद आवाज़ से सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुतबे के जो है चंद पॉइंट्स हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं लेकिन जो जितना वक्त बाकी बचा हुआ है हमारे पास उस हिसाब से जो है हम गुफ्तगू करेंगे जल्दी जल्दी। कि आगाज़ में जनाब सैयदा ने जिस मतलब को महसूस किया इन्हराफियत के लिहाज से, स्टार्ट वहीं से लिया कि जो हमने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, खुदा ने क़ुरान में तुम्हें ईमान की दावत देकर तुम्हारे दिलों को शिर्क की निजासत से पाक करना चाहा है। यानी जनाब सैयदा ने यहाँ पर क़ुरान के ज़रिए से, यानी क़ुरान को तुम फरामोश कर गए हो लिहाजा जो है तुम जो है ठोकर खा रहे हो, आओ कुरान की जानिब। कुरान की जानिब जब आओगे तो इस कुरान को समझने के लिए जो है तुम्हें जो है हमारा सहारा लेना होगा। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इत्रती व अहलु बैती, ये एक नुक्ता। दूसरा, खुदा ने नमाज को गौर से सुनने का, बड़ा लतीफ़ है, मस्जिद में भी बैठे हुए हम हज़रात सब के सब, खुदा ने नमाज को तकब्बुर से दूरी का ज़रिया करार दिया है। मैं दरबार में जाकर जो कि ये गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत थी, मगर बतलाया कि मैं तुम्हारे दरमियान इन तमाम चीज़ों को देख रही हूँ, तुम ज़ाहरी नमाज तो अंजाम दे रहे हो मगर खुदा फरामोश हो, अगर खुदा फरामोशी ना होती तो ये नमाज तुम्हें जो है बाकायदा नतीजा देती पॉजिटिव। तुम्हारी ये हरकतें बतला रही हैं कि तुम्हारी नमाज ज़ाहरी है और ज़ाहरी नमाज के अंदर खुदा नहीं होता है। बस खुदा ने नमाज को तकब्बुर से दूरी का ज़रिया करार दिया है, जो नमाज पढ़ेगा वो मुतकब्बिर नहीं होगा, जनाब सैयदा फरमा रही हैं। तीसरा जो नुक्ता है, का ज़कात को वाजिब करके अखलाकी आलूदगी को दूर करना चाहा है, का तुमने जो है उस अमल को फरामोश कर दिया है कि जिसे कहा जाता है ज़कात। ज़कात दरहकीकत जो एक असर रखती है, और वो असर क्या है कि जो ज़ाहरी तौर पर ज़कात देता है दरहकीकत जो है अपने अंदर के मैल को दूर करता है। काबिल गौर है, मैं और आप अगर किसी को खैरात दें, किसी को सदका दें, किसी को ज़कात के उनवान से कुछ दें, चाहे वाजिब या मुस्तहब, तो ये ज़ाहिर में पैसा जा रहा है ना, वो पैसा जा नहीं रहा है, बल्कि जो है जाने के बाद हमें तहारत देता है। अगर इस अकीदे से ज़कात निकले तो हमारे जो है नफूस की पाकीज़गी का ज़रिया बनता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके ज़ैल में। हज को दीन की मजबूती का ज़रिया करार दिया। तुम हज अंजाम देते हो, ए महाजरों, ए अंसारों, कहाँ गया तुम्हारा दीन? अगर तुम वाकई हाजी हो तो तुम्हारा दीन मजबूत होना चाहिए, और ये जो अमल तुम अंजाम दे रहे हो ये दीन की बुनियादों को खोखला करने वाला है, लिहाजा तुम्हारा हज हज नहीं। अदालत को अपनाओ ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिले। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये निशानी जानते हो किस चीज़ की है? ये इस्तराब की निशानी है, परेशानी की निशानी है, और जहाँ परेशानी होती है उसका रीशा और उसकी बेस और उसका रीज़न जो है जुल्म है। यहीं से इस्तेफादा करते हैं आज की दुनिया के अंदर। हम अपने आप से चलते हैं एक एक करके और पूरे मुआशरे को देखें, क्यों सारी आसाइशें मौजूद होने के बावजूद हम परेशान रहते हैं? क्यों मुआशरे के अंदर सारी खुदावंद आलम की नेमतें मौजूद हैं लेकिन अजीब हलचल और इस्तराब दिखाई देता है, परेशानी? क्यों क्यों और क्यों? इन तमाम क्यों का जवाब जुल्म, जुल्म और जुल्म है। इंसान अपने आप से जुल्म शुरू करता है और अपने मुआशरे तक लेकर जाता है। अब वो जुल्म कैसा होता है? कभी लफ्जी तौर पर, कभी अमल की सूरत में, और कभी फिक्री सूरत में। मैं और आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, मैं और आप किसी के बारे में बुरा कहते हैं, या अपने हाथों से जो है किसी पर जुल्म करते हैं। जनाब सैयदा क्या फरमा रही है? जिस मुआशरे के अंदर, गौर से सुनिएगा, अदालत होगी वो मुआशरा खुशहाल होगा, और जहाँ पर जो है अदालत नहीं जुल्म होगा वहाँ पर मुआशरा जो है बेहाल होगा, परेशान हाल होगा। यहीं से इस्तेफादा करते हैं, ज़्यादा ज़हमत नहीं देंगे। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि मुझे अल्लाह की याद, अल्लाह कह रहा है, दिलों को इत्मीनान देती है। ये चंद पॉइंट्स हैं, अगरचे जो बहुत ज़्यादा फहरिस्त थे पूरी, लेकिन सारी जो है फहरिस्त जो है वक्त नहीं, और ना हमारे अंदर हिम्मत है ना आपके अंदर हौसला है। इतना ही काफ़ी है ना होने से, कुछ बेहतर है थोड़ा सा हो जाए। आगाज़ में जो क्या हमने एक आयत पढ़ी आपके सामने खुतबे के ज़ैल में, सूरह नहल आयत नंबर 97। जनाब सैयदा को अगर देखना हो ना तो इस आयत के ज़ैल में देखें। अगर आज तक उनका नाम बाकी है, उनका काम बाकी है, उनकी शख्सियत बाकी है, उनकी शोहरत बाकी है वाकई, तो राज क्या है? मन आमेला सालेहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो शख्स भी चाहे वो मर्द हो या औरत, नेक अमल अंजाम दे, नेक यानी खालिस पुरखलूस, बुनियाद क्या हो? वह हुआ मोमिन, वो मोमिन हो, ईमान की फाउंडेशन हो, उस पर इमारत तामीर हो अमल साले की। बारेलाह कहना क्या चाहता है? का ऐसा इंसान चाहे मर्द हो या औरत कि जो मोमिन हो और अमल साले अंजाम दे, हम उसे गिफ्ट देते हैं, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयात देते हैं पाकीज़ा। वो अगर गुफ्तगू भी करता है तो पाकीज़ा, वो अगर देखता है तो पाकीज़गी और तहारत के साथ, वो अगर सुनता है तो तहारत के साथ। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी। साहिब तफसीर अल मीज़ान इस मकाम पर कहते हैं, दुनिया में भी जो है खुदावंद आलम पाकीज़ा ज़िंदगी अता करता है, यानी ऐसा इंसान जहाँ जाता है वहाँ जिस पाकीज़गी के दूसरे आसार दिखाई नहीं देते। वलनजियन्नहुम, अजरहुम बिअहसने मा कानू यामलून। और दूसरा गिफ्ट क्या देता हूँ, का दूसरा गिफ्ट यह है कि जो वो अमल अंजाम देता है ना, फ़र्ज़ करें एक अमल अंजाम दिया है, का एक अमल की बजाय 10 जो है सवाब देता हूँ उसको, 10 की बजाय 70 देता हूँ उसको, का एक की बजाय एक नहीं देता, उसका अज्र जो है 10 बराबर 70 बराबर मैं देता हूँ जो कुछ वो कह करते हैं। लेकिन किस तरह से देता हूँ, का अगर जो है क्वांटिटी के लिहाज से एक है तो 10 देता हूँ, क्वालिटी के लिहाज से कम है तो मैं उसे उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता हूँ, उसकी कैफियत को बढ़ा देता हूँ। जनाब सैयदा को देखते हैं, जनाब सैयदा 18 साल की हैं, इस दुनिया से रुख्सत हो गई, पिछली नशस्त में अर्ज हुआ था आपकी खिदमत में, 18 साल तो कुछ भी नहीं है, मगर 18 साल कैसे बाबरकत कि अब तक जो है उम्मत मुस्लिमा फैजियाब हो रही है, ता कयामत आने वाली उम्मत और मुसलमान फैजियाब होते रहेंगे, ये बाबरकत जिंदगी है कि 18 साल में क्यों कर एक इंसान जो है आने वाली दुनिया ता कयामत उनके लिए जो है फैज़ का जो है सबब बन सकता है, तो राज उसका ईमान और अमल साले है। और यहीं से इस्तेफादा करते हैं और इल्तिमास दुआ कि मैं और आप भी अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र, हमारा माशरा बाबरकत हो, हमारे घर से लेकर हमारी सोसाइटी, तो फिर ज़रूरी है दो चीज़ों को अपने साथ रखें, एक ईमान, दूसरे अमल साले, ताकि हयात हमारी क्या हो, तैयब पाक और ताहिर हो, और हमारी तहारत से क्या हो, माशरे को भी जो है तहारत मिले। सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए खुदावंद आलम से दुआ करते हैं, बार अल्लाह हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा, आमाल सालिहा बजा लाने की तौफीक अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से सुबकदोशी अता फरमा, बार अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलावात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद।